जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हिंदी भाषा का प्रयोग करें, ठीक है ना, सबके लिए। हरे कृष्णा। तो आज सवेरे हमने, जो लोग नहीं थे उनके लिए बता दें, भारत के कुछ धामों का वर्णन किया और उसके बाद श्री वृंदावन का वर्णन किया और बाकी धामों में और वृंदावन में क्या फर्क है वो बताया। तो संक्षेप में, श्री वृंदावन धाम जो है उसमें भगवान अपनी भगवत्ता को छोड़ के आते हैं। भगवान भगवान है ना, लेकिन अपना भगवान होना ये भी छोड़कर भगवान आते हैं और ऐसी लीला करते हैं जो बाकी जगह पर भगवान बनकर आते वहाँ पर नहीं कर सकते। और एक बात बताना सुबह भूल गया मैं, कि वृंदावन में उनको ही प्रवेश भगवान देते हैं जो उनके अनन्य भक्त हैं। अनन्य यानी निरपेक्ष, और कोई उनके मन में कोई कामना नहीं होती है। भगवान को संतुष्ट की करने के बजाय और कोई अन्य कामना, अनन्य और कोई कामना उनके मन में नहीं होती। और ऐसे भक्तों का ज्ञान भगवान छीन लेते हैं। कौन सा ज्ञान? कि भगवान भगवान है। भगवान के विषय में जो परम भगवान होने का ज्ञान है वो ज्ञान भगवान छीन लेते हैं, इसलिए उनको पता नहीं होता है। लेकिन भगवान के इतने निकट रहने के लिए परम ज्ञान होने की आवश्यकता है। भगवान के इतना निकट होने की योग्यता प्राप्त करने के लिए अनंत जन्मों की तपस्या, अनंत जन्मों का त्याग और परम ज्ञान साक्षात्कार होना जरूरी है। वो सब होने के बाद में वही ज्ञान भगवान छीन लेते हैं आपके और हमारे साथ लीला करने के लिए। ये बहुत अद्भुत चीज़ है। तो ये वृंदावन कैसे निर्माण हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उत्तर यह है कि भगवान ने अपने स्वेच्छा से ये गौलोक वृंदावन निर्माण किया। हरे कृष्णा। आइए, गौलोक धाम और आज हमने जो वृंदावन का वर्णन किया, ये अलग अलग हैं। वैसे एक ही है लेकिन फिर भी अलग है। कैसे? हरे कृष्णा। यहाँ पर जो वृंदावन धाम है उसको भौम वृंदावन धाम कहते हैं। भौम का मतलब क्या है? जो भूमि यानी पृथ्वी पर विस्थापित किया गया है, स्थापित किया गया है उसको, भूमि के ऊपर स्थापित वृंदावन को भौम वृंदावन कहा गया है। और जो मूल वृंदावन है वो गौलोक वृंदावन कहा गया उसको। यानी कि भगवान ने अपने दिव्य धाम, चिरंतन धाम, शाश्वत धाम को गौ से नाम दिया है। कितनी प्रिय है भगवान को गाय। हम अपना घर का नाम किस पर देते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय है उसको अपना? आमतौर पर बच्चों के नाम पर देते हैं, गाड़ी पर भी बच्चे का नाम लिखते हैं। जो हमें सबसे प्रिय है उसका नाम अपने अपने घर को या अपने प्रिय वस्तु को दे देते हैं। तो ये दृष्टि से देखा जाए तो भगवान ने अपना नाम का धाम का नाम गौ लोक लिखा है। मतलब जहाँ पर गायें विहार करती हैं। और वृंदावन की और एक व्याख्या बताई गई आचार्यों ने, वृंदावन वो जगह है जहाँ पर गाय निर्भय होकर विहार करती है। इस व्याख्या के अनुसार पूरा भारतवर्ष वृंदावन था, क्योंकि पूरा भारतवर्ष में गाय लोग बड़े प्रेम से निर्भय होकर विहार करते थे। कोई कटने की उनको कोई चेतना या ऐसे कोई डर नहीं था। और आज वृंदावन में भी वो डर है उनको कि कौन उठा के ले जाएगा उनको। ये स्थिति कलयुग की हो गई है। तो ये गौलोक वृंदावन स्वयं कृष्ण भगवान ने बनाया है, उसका निर्माण किया है। और उसको निर्माण करने के बाद में भगवान के शरीर के दाएं अंग से सभी ग्वाल वालों का निर्माण हुआ, फिर देवताओं का निर्माण हुआ, और भगवान के बाएं अंग से राधा रानी का निर्माण हुआ, और उनकी तरफ से फिर गोपियों का निर्माण हुआ, और उसके बाद में फिर देवियों का निर्माण हुआ। शक्ति कहते हैं उसको, भक्ति शक्ति, यानी सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, गायत्री, देवाहूति, ऐसी भगवान की 20 शक्तियाँ हैं जो देवी के रूप में प्रकट होती हैं, उनको भगवान ने निर्माण किया। फिर गौलोक वृंदावन का जो प्रजा है, जो जनता है, उनका पूरा निर्माण पूर्ण हुआ। फिर जब भी लोग एकत्र होते क्या करते हैं, कुछ आदान प्रदान करते ना, कुछ क्रिया होती है। लोगों के एकत्र आने से कुछ नहीं हुआ ऐसा नहीं होता है। हम लोग एकत्र आए कुछ नहीं हुआ ऐसा नहीं हो सकता है। तो जैसे ही भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया उनके गौलोक वृंदावन के, तो उनके मन में प्रेम का आदान प्रदान करने की इच्छा निर्माण हुई। फिर गोपियों ने, राधा रानी ने भगवान से रास लीला रचाई, और वो जो रास नृत्य हुआ भगवान और गोपियों के बीच में, उसमें भगवान के शरीर से और गोपियों के शरीर से दिव्य जल निर्माण हुआ, जिसको हम इस दुनिया में पसीने के रूप में समझते हैं। लेकिन वो पसीना कहना भी उसका अपमान है, क्योंकि पसीना जो होता है वो बदबूदार होता है। लेकिन इसको स्वेद कहते हैं, दिव्य स्वेद। हमारे बायोलॉजी में भी लिखते हैं स्वेद ग्रंथि, यानी क्या, स्वेट ग्लैंड्स। तो वो स्वेद जो है ना वो दिव्य होता है, उसमें दिव्य सुगंध होती है, और वो जितना बहे उतना सुगंध निर्माण करता है। गोलोक वृंदावन में जो अश्रु भी होते हैं वो दुख के नहीं होते हैं। यहाँ पर अश्रु कब बहते हैं? जब दुख होता है, जब कष्ट होता है, कोई हमें पीड़ा देता है। तो ऐसा दिव्य स्वेद और दिव्य अश्रु का प्रवाह हुआ जब भी भगवान ने सभी गोपियों के साथ में आनंद भरा दिव्य नृत्य किया। और जब वो दिव्य जल निर्माण हुआ शरीरों से तो एक जगह जाके इकट्ठा हो गया, और जब नृत्य समाप्त हुआ तो एक बहुत भव्य तालाब बना। तो राधा रानी और कृष्ण भगवान और सब गोपियाँ उसका दर्शन करने के लिए आए। जब रास समाप्त हुआ, जब राधा रानी ने देखा कि इतना सुंदर तालाब तैयार हो गया है तो बड़ी प्रसन्न हो गई वो। उन्होंने कृष्ण से कहा कि अभी ये तालाब को, जो जलाशय बना हुआ है, इसको नदी का स्वरूप दिया जाए, इसको प्रवाहित किया जाए। तो वो तालाब प्रवाहित हो गया और उसी का नाम यमुना है। फिर वो यमुना जो है वो गौलोक वृंदावन का एक अविभाज्य अंग बनी। जैसे कि यमुना को गौलोक वृंदावन से आप अलग नहीं कर सकते हैं, उसका अस्तित्व ही नहीं है उसके बिना। फिर राजा रानी और भगवान का एकांत हुआ एक जगह पर। उन्होंने डिस्कस किया कि हमें ऐसा स्थान चाहिए, एकांत, जहाँ पर हम कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ये जब बातें हो रही थी कि हमें एकांत की आवश्यकता है और ऐसा स्थल की आवश्यकता है जहाँ पर कोई नहीं आएगा, उसी समय कृष्ण के हृदय वक्ष स्थल से एक दिव्य तेज निर्माण हुआ, जो दिखाई पड़ रहा है कि इनके छाती से ऐसे प्रकट हो रहा है, और दोनों के आंखों के सामने वो प्रकट होकर सामने जाकर ऐसे भूमि पर, वहाँ के भूमि पर विराजमान हो गया और ऐसे बड़ा होने लगा। और वही है गोवर्धन पर्वत, जो भगवान के, राधा रानी की इच्छा के वजह से और भगवान के दिव्य बल से, उनके वक्षस्थल के दिव्य रूप से पैदा हो गया। और वो इतना बढ़ने लगा, उसका विस्तार, उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई, कि एक समय पर फिर उसको रोकना पड़ा कि अभी बस और नहीं बढ़ा होना। कहते हैं, आप शास्त्र पढ़ेंगे, ब्रह्म संहिता, गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसमें यह वर्णन आया है कि करोड़ों योजन आकाश में ऊंचा था ये। एक योजन 8 मील का होता है। करोड़ों योजन आकाश में ऊंचा था, करोड़ों योजन उसका विस्तार था जमीन पर, चौड़ाई और लंबाई। तो ये पर्वत देखकर बहुत राधा रानी और कृष्ण को आनंद हुआ, और कृष्ण ने कहा कि इसी के इर्द गिर्द हम एकांत निवास करेंगे, एकांत लीला करेंगे। इस तरह से गौलोक के अंदर गोवर्धन का निर्माण हुआ। अभी देखिए, गौलोक का नाम भी गौलोक और पर्वत का नाम भी गोवर्धन, यानी क्या कि जो गोवंश को वर्धन, बढ़ने के लिए, बनाए रखने के लिए, वृद्धि होने के लिए बहुत आवश्यक है, जिसका अस्तित्व के वजह से गोवंश का वृद्धि होती है, उसका नाम है गोवर्धन। और गोवर्धन का क्या वैशिष्ट्य है कि गोवर्धन में क्या नहीं है जीवन चलाने के लिए, सब कुछ है। गायों के लिए घास है और जड़ी बूटियां हैं, रत्न है, जलाशय है, छोटे हैं, बड़े हैं, नदी के प्रवाह हैं, झरने हैं, गुफाएं हैं बैठने के लिए, वन है उसके अंदर, बहुत सारे वृक्ष हैं फल के, फूल के, और अनंत प्रकार के किलरव करने वाले पक्षी हैं, सब प्रकार के जानवर हैं जो गोलोक की शोभा बढ़ाते हैं और गोवर्धन में निवास करते हैं। इसलिए ब्रजवासियों का सारा अस्तित्व ही गोवर्धन पर निर्भर था। जीवन चलाने के लिए जो भी आवश्यकता, वो सब गोवर्धन में उपलब्ध था। तो फिर गोवर्धन, यमुना और वृंदावन, ये तीन ऐसे एक दूसरे से अविभाज्य अंग बने। फिर आगे जाकर लीला जो है वो भी, गोलोक धाम का जो अस्तित्व है वो चिरंतन है, उसका कोई बिगिनिंग और एंड नहीं है, अनादि और अनादिरादिर ऐसा है वो। हमारा जो धाम है, जो हम लोग रहते हैं यहाँ पर पृथ्वी पर, उसका एक समय निर्माण हुआ है और एक समय अंत भी होगा। आप लोगों को विश्वास है इस बात पर? ये जो हमारा अस्तित्व है, इसको कहते हैं भौतिक जगत, और वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत। तो भगवान की दो प्रकार की सृष्टि है, एक सृष्टि है दिव्य सृष्टि, और दिव्य सृष्टि का स्वभाव क्या है, वहाँ पर जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा नहीं होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, सब लोगों को पता होना चाहिए। ABCD है, ये कोई बड़ा ज्ञान नहीं है, ये केवल मूलभूत ज्ञान है, ABCD। तो वहाँ पर जो जीते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम ममा, वहाँ पर जो भी जीव होता है भगवान की इच्छा से कभी उसका निर्माण हो गया अनादि काल पहले, लेकिन उसका अंत नहीं होता है कभी। वहाँ पर बीमारी नहीं होती है, वो बुढ़ापा नहीं होता है, वहाँ पर बदबू नहीं होती है। शरीर से 9 अंगों से कहीं भी द्रव्य निकलता है तो उसमें से बदबू नहीं आती। वहाँ पर नाले नहीं, गंदी नाले नहीं होते हैं, वहाँ पर टॉयलेट्स नहीं होते हैं, क्योंकि शरीर में वहाँ पर मैल उत्पन्न होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वहाँ का शरीर जो है वो दिव्य है, सच्चिदानंद है, वहाँ पर लोग रहते हैं। और फिर उसके बाद वैकुंठों का निर्माण किया उन्होंने। गौलोक में वैकुंठ में अंतर क्या है कि गौलोक में भगवान की भगवत भगवान होने की स्थिति नहीं होती है, भगवान केवल प्रेम से रहते वहाँ पर, किसी से वो अधिकार वैकुंठनाथ होने का भाव ऐश्वर्य का नहीं होता है, उसे हम ऐश्वर्य भाव कहते हैं, ऑपुलेंस। हाँ, ऑपुलेंस है लेकिन ऐश्वर्य भाव नहीं है। तो कौन सा भाव है, उसको कहते हैं माधुर्य भाव, बहुत मधुरता है हर एक वस्तु में, हर एक कदम में, हर एक वाक्य में, हर एक कृति में मधुरता है, और अनंत आनंद छुपा हुआ है हर एक गतिविधि में। और उसके आगे निर्माण करते हैं ऐश्वर्य, जिसको हम वैकुंठ कहते हैं, और उसके भी बहुत डिविजन्स हैं। द्वारका है उसके अंदर, यहाँ की नहीं, यहाँ बाद में प्रकट होती है, वहाँ पर पहले प्रकट होती है। फिर मथुरा है, अयोध्या है, जो जो धाम यहाँ पर है वो मूल वहाँ पर है, फिर उनका निर्माण होता है। और उसके बाद में ये वैकुंठ जो है वो सब भगवान के शरीर से निकलने वाले जो किरण हैं, दिव्य किरण, इसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति नीले रंग की होती है, इसलिए हमारा आकाश नीला दिखता है, क्योंकि वो भगवान के शरीर से निकले हुई आभा है, एफलजेंस है वो। और वो तेज जो है ब्रह्म ज्योति नाम का, उस वो तेज के अंदर एक शक्ति होती है पकड़ के रखने की, सस्टेनिंग पावर होती है उसके अंदर, उसमें ये सब वैकुंठ जो है तैरते रहते हैं। और वैकुंठों में भी जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा नहीं होता है, केवल भाव का अंतर है। वहाँ पर भगवान विष्णु के रूप में 4 भुजा में रहते हैं, गौलोक में 2 भुजा में रहते हैं, हमारे आपके जैसे, लेकिन वैकुंठ में भगवान 4 भुजा में रहते हैं। और वैकुंठ एक नहीं है, अनंत वैकुंठ है, और हर एक में एक अलग प्रकार के विष्णु उसका नियंत्रण करते हैं, और ये सारे अनंत जो वैकुंठ है वो ब्रह्म ज्योति में तैरते रहते हैं। और उसके बाद में एक नदी है, उसका नाम है विरजा नदी, जो वो दिव्य जगत को और भौतिक जगत को अलग करती है, डिविजन बॉर्डर है वो बॉर्डर। अब ये जगत का निर्माण क्यों हुआ है, किसी को पता है, थोड़ा सा आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, यस, कोई भी शेयर कर सकता है कि भगवान को इतना सुंदर उन्होंने दुनिया बनाई, जहाँ पर कोई मृत्यु नहीं है, बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, सुंदर शरीर है, कोई स्वेद वहाँ पर कोई मलमूत्र नहीं है शरीर में, कोई बदबू नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, इतना सुंदर जीवन वहाँ पर है, तो फिर ये दुनिया बनाने की जरूरत क्या थी उनको। हाँ, जैसे ही हमारे अंदर भगवान बनने की इच्छा पैदा होती है, स्वामी बनने की इच्छा पैदा होती है, नियंत्रक बनने की इच्छा पैदा होती है, कि वही क्यों नियंत्रक, वाई नॉट मी, सब लोग उनके पीछे क्यों भाग रहे हैं, मैं भी कुछ कम नहीं हूं। जब ये ईर्ष्या उत्पन्न होती है और स्वामी बनने की इच्छा होती है, भगवान का पद लेने की इच्छा होती है, भगवान को छोड़कर स्वामी बनने की इच्छा होती है, तो फिर इसका निर्माण होता है। जैसे अभी इसी प्रश्न का उत्तर और एक प्रश्न रूप से पूछ सकते हैं, प्रश्न कि शहर में और देश में जेल क्यों बनाते हैं, इतने सारे रास्ते अच्छे हैं, घर अच्छे हैं, कॉलोनीज है, नौकरियां हैं, बगीचे हैं, रहने के लिए घर हैं, तो जेल क्यों बनाते हैं। जो ये शहर के नियमों का पालन नहीं करते हैं, गुनाह करते हैं, उनके लिए जेल बनाते हैं। जेल में कोई रहने को जाए ऐसी गवर्नमेंट की इच्छा नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो शहर के जीवन को त्रस्त करते हैं, यानी कि डिस्टर्ब कर देते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर, कायदा और सुव्यवस्था के बनाए रखने के लिए जेल बनाते हैं। वैसे ही भगवान का घर बहुत सुंदर है, लेकिन वहाँ पर जब भी कोई जीव ऐसे कोई कामना करता है उनसे अलग रहकर उनके ही जैसे स्वामी बनने की, तो भगवान कहते हैं यहाँ पर नहीं हो सकता है, उसके लिए अलग दुनिया बनाऊंगा आपके लिए, जहाँ पर आप स्वामी है ये सोच कर रह सकते हैं। है ना, आप सब हम सब लोग अपने अपने स्वामी हैं ना, अपनी मन मर्जी करते कि नहीं, जब चाहे जो करते हैं, जब चाहे जो खाते हैं, जब चाहे सो जाते हैं, जब चाहे जो करना है वो करते रहते हैं। और अक्सर हमारी बुद्धि ऐसी होती है कि हमारे ऊपर कोई नहीं चाहिए, किसी को भी कितना भी अच्छा बॉस मिलेगा ना, भगवान भी हमारे बॉस बनेंगे ना कंपनी में तो हमें अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि वो हमारे ऊपर है, हमको आदेश देने वाले हैं। सो हमारा यहाँ पर मूड ऐसा है कि हमें कोई आदेश देने वाला नहीं चाहिए, हम आदेश देने वाला बनना चाहते हैं, यहाँ का अधिक स्वभाव है। और यहाँ पर भी द्वेष उत्पन्न होता है, भोग की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, हाँ भगवान को छोड़कर सब भोगने का दिल करता है। और फिर एक शरीर प्राप्त होता है, वहाँ से डिफरेंट होता है, वहाँ पर यूनिफॉर्म अलग है, यहाँ पर यूनिफॉर्म अलग है। ये यूनिफॉर्म का गुण क्या है, ये जन्म लेते ही बूढ़ा होना आरंभ होता है, हम लोग क्या बोलते हैं 2 days old है ना, 3 days old, अभी 3 दिन का बालक को हम भी ओल्ड बताते हैं, क्योंकि वो ओल्ड होता है ना, वो मृत्यु की ओर अपनी जर्नी शुरू कर देता है जैसे जन्म हो गया उसका, और बीच में बूढ़ा और बीमार भी हो जाता है, और जो भी शरीर से 9 छिद्रों से जो कुछ निकलता है उसे बदबूदार होता है, अपवित्र होता है, और जब चाहे बीमार पड़ सकता है, जब चाहे बुढ़ापे की ओर उसका शरीर बढ़ते रहता है। 35 ईयर्स का आदमी भी ये जवान है, लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ बुढ़ापे के चिन्ह होते हैं, फिर वो बढ़ते जाते हैं, फिर एक दिन वो एक्चुअल बुढ़ा हो जाता है। और एक्चुअल बुढ़ा होने की व्याख्या क्या है, जो मृत्यु के बहुत पास में है, डेथ इज वेरी नियर, उसको हम वृद्ध कहते हैं। और मृत्यु के एकदम पास में कौन नहीं है बताइए, जैसे गर्भ में भी बालक आया ना, वो मृत्यु के पास में, कभी भी मर सकता है वो, उसी कारण से गर्भ में अभी बाहर नहीं आया, वो अभी तक केवल दुनिया में प्रवेश किया, माता के गर्भ में बैठा है day 1 ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन तभी से उसकी मृत्यु होने की संभावना है, किसी न किसी कारण से नहीं हुई तो जन्म होएगा, और जन्म होने के बाद भी वो मृत्यु कभी भी हो सकती है उसकी। हमारे हॉस्पिटल में देखिए आप कैसे कैसे समय पर मृत्यु होती है, कोई समय नहीं है, हर समय मृत्यु के लिए पर्याप्त है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, मृत्यु लोक। बड़ा समर्पक उसको लिए नाम दिया गया है मृत्यु लोक, इसमें से कोई बचने वाला नहीं है, सब दिखने दिख रहे हैं आज, कल नहीं दिखेंगे शायद, हम सब लोग अभी इस समय इस घड़ी में इस जगह पर उपस्थित हैं, लेकिन इस घड़ी में आगे की घड़ी बड़ी बदलेगी, इसमें से कितने लोग रहेंगे और कहाँ रहेंगे कोई बता नहीं सकता है। यहाँ पर हर चीज़ अशाश्वत है, और भगवान के धाम में सब चीज़ शाश्वत है, जो है वैसे ही रहेगा। और हमारे सबकी प्रवृत्ति क्या होती है, हमको सब कुछ स्टेडी चाहिए, वी डोंट लाइक चेंजिंग थिंग्स, लेकिन हमारे स्वभाव के विरुद्ध यहाँ पर सब चीज़ें हमेशा बदलती रहती है, यही दुनिया का मूल स्थायी भाव है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर ऑफ द वर्ल्ड इज इट इज टेम्पररी। और दूसरी बात है दुखालयम, एक हो गया अशाश्वत और दूसरा हो गया दुखालयम, यहाँ पर आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, अंतिम आपको दुखी मिलेगा उससे। तो भगवान गीता में बताते हैं माम उपेत्यतु कौन्तेय दुखालयम अशाश्वतम, इस दुनिया में आप रह रहे हो ना ये अशाश्वत है, इसमें कुछ निश्चित नहीं है, और साथ साथ में जो भी है वो दुख से भरा हुआ है, इसमें कभी भी सुख की गुंजाइश नहीं है। हम लोग कितना भी प्रयास करेंगे, अच्छा काम करेंगे, फिर भी हमारे झोली में दुख का ही अनुभव आएगा, ये सत्य है इसका, ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, फैक्ट है। तो भगवान ने जब भी हमारे अंदर ऐसी ईर्ष्या उत्पन्न हुई तो इस विश्व का निर्माण किया, और उसमें कितना वैरायटी बनाया, देखो हमारे जेल में भी कितनी वैरायटी होती है, एक होती है लाइफ सेंटेंस के लिए, एक होती है कुछ महीनों वाले के लिए, आप जानते हैं मेरी तरह से अच्छी तरह से, है ना, एक होता है एरडा जेल, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे लंबे 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 क्या कहते हैं दंड वाले कैदी होते हैं, बहुत जन्म भर वहीं रहते हैं वो, फिर बड़े बड़े उनके जाकर मिल जाते हैं वहाँ पर सेल में उनसे, और कुछ होते छोटे छोटे, और एक होती कस्टडी, जो भी पॉकेट मारा किसने तो उसको पकड़ के हम लोग कुछ दिन कस्टडी रखते हैं, कोर्ट कोर्ट को पेश करने के पहले कुछ दिन रखते हैं, और बीच में छुट्टी आ गई ना ईद वीद की दिवाली की, तो फिर वो कस्टडी बढ़ा देते हैं कोर्ट में प्रस्तुत करने के पहले, फिर कोर्ट में उसका होता है जजमेंट, फिर उसको बोलते हैं यहाँ पर 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, उस प्रकार से फिर दंड मिलता है वहाँ पर। और जेल बनाने के बाद में जेल का उद्देश्य क्या है? रेफॉर्मेशन, यानी कि हृदय परिवर्तन हो जाए उसका अच्छे अच्छे के लिए, ताकि वो गुनाहगारी प्रवृत्ति जो है वो छोड़ दें उसको और अच्छा नागरिक बने, ताकि दोबारा उसको शहर में भेजा जाए, जाओ भाई अच्छी तरह शहर में रहो और वापस यहाँ पर मत आओ। तो ये विश्व भी जो है भगवान ने उसी के लिए बनाया है कि हमारी जो मेंटेलिटी है ना, मानव प्रवृत्ति जो है, मनोप्रवृत्ति, वो पवित्र हो जाए और दोबारा भगवान के धाम के लिए अनुकूल हो जाए, और दोबारा हम वहीं चले जाकर वहीं रहे जो हमारा मूल निवास है, ओरिजिनल होम, कहाँ से आए हैं हम, कहाँ हम लोग, कहाँ हमारा स्थायी भाव है, उस भाव को यहाँ पर प्राप्त करना है दोबारा। एक बार वो प्राप्त हो गया उसके अनुकूल, तो फिर एक क्षण भी आपको भगवान यहाँ नहीं रखेंगे, तुरंत आपको वहाँ छोड़ ले जाएंगे। ये हमारा ट्रेनिंग जोन है, एक तरह से ये पनिशमेंट जोन भी है, दंड भोगने वाला हिस्सा इलाका भी है ना। हम लोग जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा का दुख भोग रहे हैं यहाँ पर, लेकिन दूसरी तरफ से ये ट्रेनिंग सेंटर भी है जहाँ पर हमें ट्रेनिंग किसकी करनी है, भक्ति की। और वो ट्रेनिंग लेकर हम जब वो ट्रेनिंग पूरी करेंगे, हमें सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा, यस अभी गौलोक धाम के अनुकूल भाव निर्माण हो गया है, तो फिर तुरंत भगवान हमें उनके धाम में लेके जाएंगे। तो इस धाम में फिर राक्षस पैदा होते हैं जो बहुत ज़्यादा गुनाह करते हैं, आतंक पैदा करते हैं, और भगवान की बड़ी बहुत सारे भक्त भी यहाँ पर आते हैं उसकी देखभाल करने के लिए। जैसे पृथ्वी माता आती है सबको भूमि पर निवास देने के लिए, फिर और देवता आते हैं, वो देवता फिर कोई जल देते हैं, कोई प्रकाश देते हैं, कोई वायु देते हैं, कोई और बहुत सारी चीज़ें हैं। दुनिया को मेंटेन करना आसान काम नहीं है, इसमें दुनिया में कितनी चीज़ें हैं जो हमारे मेंटेनेंस के लिए आवश्यकता है ना, उसकी कितने ऐसी वस्तुएं हैं, कितने अनंत प्रकार की व्यवस्था है। यहाँ पर समुद्र बनाया गया है, वहाँ सूर्य उसको प्रकाश उष्णता देगा, उसमें से खारे पानी से डिस्टिलेशन करेगा, शुद्धिकरण, और वो आकाश में लेके जाएगा, वहाँ से वायु धक्का देगी उसको, उसका बादल बनेगा, फिर वायु धक्का देगी तो आगे जाकर उसकी बरसात के रूप में शुद्ध पानी जो नमकीन नहीं है वो आपको प्राप्त होगा। आज सुबह में सोच रहा था कि इतनी वर्षा हो रही है, आप बोले कितनी वर्षा वेस्ट हो रही है, कहाँ जा रही है, देखो सब यहाँ वहाँ जा रही है, लेकिन नहीं, जमीन के अंदर भी भगवान ने स्टोर करने का प्लानिंग भगवान ने बनाया है। इतना सुंदर व्यवस्था है, जमीन के अंदर कई 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 हजारों फीट तक भी पानी का बहाव और स्टोरेज भगवान ने बना के रखा हुआ है, उसका भी साइंस है। आप गांव में जाएंगे ना तो नारियल लेके जाएंगे थाली में और ऐसे घुमाएंगे तो उल्टा सुल्टा ऐसे घूमने लगता है, डांस करने लगता है वो, और उसमें से लोग पहचानते हैं कि इसके यहाँ पर जल मिलेगा, तो वहाँ पर बोरिंग करते हैं तो वहाँ पर कुआं पैदा होता है। कितनी अजीब बात है ना, यहाँ पर अभी सैटेलाइट से भी उसको देखते हैं, साइंस साइंस, लेकिन गांव का आदमी क्या करेगा, अनपढ़ आदमी, और थाली में नारियल लेगा जाएगा घूमेगा ऐसे ऐसे, जैसे ही पानी के सोर्स के ऊपर आएगा वो नारियल नाचने लगेगा, एक्चुअल इज स्टार्ट डांसिंग, आपको देखना चाहिए वो, फिर पता चलेगा कि हमारा साइंस एक जगह पर है और ये साइंस दूसरी जगह पर है और ये काम करता है, ऐसा नहीं कि इट्स नॉट वर्किंग, इट्स ऑल्सो वर्किंग। तो भगवान ने ऊपर से भी पानी की व्यवस्था की है, और नदियाँ बनाई है, कुएं बनाए हैं, कुंड बनाए हैं, तालाब बनाए हैं, और जमीन के अंदर भी पानी का सोर्स बनाया हुआ है। कभी कभी 200-200 फीट तक बोरिंग करते हैं और उसका पंप से पानी निकाल कर उसका उपयोग करते हैं, जहाँ पर समुद्र नहीं है, नदी नहीं है, वहाँ पर बोरिंग और कुएं से पानी लोग देते हैं। तो भगवान ने कितना व्यवस्था किया यहाँ पर, तो वो सारी व्यवस्थाएं भगवान के जो विश्वस्त लोग हैं ना वो करते हैं, उसको देवता कहते हैं। लेकिन फिर भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं ना, वो उसका शोषण करते हैं, जल का, वायु का, इसका उसका, सबको अपवित्र बना देते हैं, है कि नहीं? हमारे बचपन में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पानी पीने का बोतल में खरीदना पड़ेगा, इमेजिन, कभी भी विचार नहीं किया था ऐसा बचपन में। हम लोग हम जब भी घूमते थे ना ट्रेन से, तो कभी उतरते थे और ट्रेन के नल को ऐसे हाथ से पानी पीते थे हम लोग, कोई इन्फेक्शन का डर नहीं था, कोई डेंजर नहीं था, कोई रिस्क नहीं था उसके अंदर। और आज हम लोग पी सकते हैं क्या, स्टेशन पे उतर के नल चालू करके हाथ से पानी पी सकते हैं? रिस्क है उसके अंदर बहुत। और आज हम लोग कोई पानी जो है ना बोतल में 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया में खरीदते हैं उसको। वो भी उसके अंदर भी क्या क्या होता है, बाप रे, फंगस और बैक्टीरिया और वायरस, क्या क्या नहीं होता है। तो ये मनुष्य ने ही, भगवान ने दिए हुए प्रकृति को दूषित करके ये सब, पानी दूषित कर दिया है, हवा दूषित कर दिया है, पेट्रोल को जलाकर प्रदूषण पैदा किया है, प्लास्टिक बनाकर प्रकृति का नाश किया है। तो ऐसे लोग होते हैं जो पृथ्वी पर अवेलेबल होते हैं, या पृथ्वी पर या और लोकों पर अवेलेबल होते हैं। फिर एक समय पृथ्वी बहुत दुखी हो जाती है। पृथ्वी में कितनी शक्ति है देखो, धारण करने की, कितना वजन पृथ्वी देख रही है, इतने पर्वत उस पर खड़े हुए हैं, इतने सारे हम लोग जानवर लोग भी और जानवर लोग भी खड़े हैं उसके अंदर विहार कर रहे हैं, और कितनी बिल्डिंग बनाई हम लोग ने, क्या नहीं बनाया, कितना सारा वजन है पृथ्वी के ऊपर। लेकिन जैसे एक गर्भवती स्त्री 9 महीने में 2-2 बच्चे पेट में रखते हुए, उसको वजन का अनुभव नहीं होता है वजन का अनुभव लेकिन दुख नहीं होता है उसका, उसका वेरी हैप्पीली बड़े प्रेम से वो 2-2 बच्चों का भार 9 महीने तक पेट पर भारती धारण करती कि नहीं। जब तक प्रेम से है तब तक कोई दुख नहीं है उसका। लेकिन जैसे ही असत्य और पाप लोग धारण करते हैं तो पृथ्वी का उनका भार सहन नहीं होता है। देखिए, असत्य और पाप, ये 2 चीज का भार पृथ्वी को सहन नहीं होता है। और जब ये बहुत हो जाता है तो पृथ्वी फिर गाय का रूप धारण करके भगवान के पास जाती है। ये हर युग में होते रहते हैं। प्रभु रामचंद्र के आने के पहले भी ये हुआ है, कृष्ण भगवान के अवतार होने के पहले भी हुआ है, और हर समय जब भगवान के आने का समय होता है तो पृथ्वी फिर गाय का रूप धारण करके भगवान के पास रोते रोते जाती है और विनती करती है कि भगवान मुझे ये सहन नहीं हो रहा है, अभी मैं बहुत सारा सहन कर चुकी हूँ, अभी सहन नहीं कर सकती, आपको आना ही होगा अभी। तो ऐसे ही एक समय पर जब भी पृथ्वी गाय बनकर, और उनका भी स्टेशन फिक्स है कहाँ जाने का है, पहला कंप्लेंट कहाँ लॉज करना है, वो फिक्स है जगह उनकी। तो पहले कहाँ जाती गाय, ब्रह्मा जी के पास जाती है। और ब्रह्मा जी कौन है, जैसे इस ब्रह्मांड के CEO है, वो प्रमुख कार्यकारी अधिकारी है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सबसे प्रथम नागरिक है वो ब्रह्मांड के। और वो उनके द्वारा फिर यहाँ का बहुत सारा निर्माण होता है, वो भी बहुत टेक्निकल चीज़ है, बहुत सुंदर उसका वर्णन पंचम स्कंध में श्रीमद् भागवत में दिया है, 3रे स्कंध में भी दिया है और 5वें स्कंध में भी दिया है। बहुत सुंदर कैसे भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, अभी वो वर्णन नहीं करेंगे, बहुत लंबा समय जाएगा उसमें। तो वो ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर, वो गाय को लेकर, पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर के किनारे जाते हैं। उसका मतलब क्या होता है, क्षीर मतलब दूध और सागर का मतलब सागर, तो मतलब एक सागर भी है जो दूध से बना हुआ है। जैसे हमारे खारे पानी का सागर है ना, वैसे अनंत मात्रा में वहाँ पर दूध पड़ा हुआ है। एक और सागर है जो तेल का बना हुआ है, एक और सागर है जो घी का बना हुआ है, से 7 सागर बने हुए, सप्तद्वीप। जैसे शहर में अगर एक समझो एक चींटी रहती है, चींटी समझो समुद्र से बहुत दूर रहती हो, और कोई मेंढक आके उसको बोलता है कि अरे पगली जानती हो तुम, एक समुद्र नाम की चीज़ होती है, मैं वहीं से आ रहा हूँ, तो कहेगी कितना बड़ा होता है, 1 चम्मच 2 चम्मच, इसमें वो डूबती है ना, उतने चम्मच पानी में चींटी डूब सकती है। तो वो मेंढक क्या बोलेगा उसको, नहीं नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा होता है वो, तो कितना, 10 चम्मच 50 चम्मच 1000 चम्मच, तो मेंढक क्या बोलेगा, अरे नहीं 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 वो बहुत बड़ा होता है। जैसे वो चींटी का बुद्धि के लिए वो सागर का साइज समझना कितना मुश्किल है, उसके बुद्धि के वो बैठेगा नहीं उसके अंदर, वो कल्पना ही नहीं बैठ सकती, वैसे हमारे बुद्धि में भी तेल का समुद्र और घी का समुद्र और दूध का समुद्र, और एक वर्णन आता है आमरस की नदी, बहुत सुंदर वर्णन और लीला है उसके अंदर, भागवत में दिया गया। तो वैसे ही ये सारे समुद्र हैं, वैसे दूध के समुद्र में स्वयं भगवान विष्णु का एक स्वरूप, हाँ अनंत स्वरूपों में से एक स्वरूप, क्षीर उदक शाही विष्णु कहते हैं उसको। क्षीर उदक यानी दूध के सागर में विराजमान जो विष्णु है उनको क्षीर उदक शाही विष्णु कहते हैं, और वो इस ब्रह्मांड के फर्स्ट अथॉरिटी है ब्रह्मा जी के ऊपर। तो ब्रह्मा जी उनको सबको लेकर उसके किनारे चले जाते हैं, वहाँ को वो तो अंदर आए हैं, बहुत किनारे में खड़े रहकर एक श्लोक बोलते हैं, एक श्लोक नहीं है बहुत सारे श्लोकों का एक कलेक्शन है, उसका नाम है पुरुष सूक्त। पुरुष सुक्तो, जो पुरुष भगवान विष्णु अंदर विराजमान है, निद्रा में है, शेष पर विराजमान है, उनके लिए वो प्रार्थना है। और ब्रह्मा जी के नेतृत्व सब लोग प्रार्थना करते हैं, फिर वो सुनते हैं प्रार्थना और उसके अनुसार एक मैसेज भेजते हैं ब्रह्मा जी के हृदय में। जैसे हम लोग कैसे यहाँ बैठकर कुछ बटन दबाते हैं तो पति के पास मैसेज पहुँचता है कि मैं आ रही हूँ, ये जादू है ना एक तरह से। आप कहाँ बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, और आपके यंत्र में वो मैसेज पैदा हो जाता है। वैसे ही उससे भी हाई टेक्निक है ये, जो विष्णु के हृदय से सीधे ब्रह्मा जी के हृदय में मैसेज आ जाता है क्या करना है अभी। तो एक समय पर जब ये प्रार्थना करने गए थे तो शिरोधोक्षाय विष्णु सीधे उठकर वहां पर आ गए, मैसेज नहीं भेजा उन्होंने। उन्होंने कहा हम सब लोग चलते हैं गौलोक वृंदावन और भगवान श्री कृष्ण जो है उनसे हमारी दरख्वास्त करते हैं। तो क्षीर उदक सागर के रहने वाले विष्णु, ब्रह्मा जी के नेतृत्व में आए हुए सारे देवता और गाय, सभी लोग एन मास ऊपर पहुंच जाते हैं। कहाँ पर पहुंच जाते हैं? गौलोक वृंदावन में, जिसका वर्णन आपने हमने पहले किया। और वहाँ पर जैसे ही आते हैं तो श्री हरि कृष्ण जो भगवान है वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, और ये जो विष्णु है वो उनके शरीर में विलीन हो जाते हैं, जहाँ से उनका निर्माण हुआ था वहीं वो विलीन हो जाते हैं। और फिर श्री हरि जो हैं वो पृथ्वी से कहते हैं कि अभी भी आप रो रही हो, गौलोक वृंदावन में कोई रोने का काम नहीं है, गौलोक वृंदावन में कोई रोता नहीं है। तो वो कहते हैं मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए आप, फिर मेरा रोना बंद हो जाएगा। तो भगवान ने कहा निश्चित रूप में जानता हूँ तुम क्यों रो रही हो, और मैं अभी ऐलान करता हूँ कि मैं अभी पृथ्वी पर जाऊँगा, वहाँ पर अवतार लूँगा और तुम्हारे ऊपर पाप और असत्य का भार जितने जितने निर्माण किया है उन सबका मैं वध करूँगा, संतों को आनंद दूंगा, धर्म की स्थापना करूँगा और सब कुछ ठीक करके लौट के आऊँगा। अभी जब भगवान हरि प्रकट हुए तो राधा रानी जो वहाँ पर उनके साथ रहती है वो भी प्रकट हुई थी वहाँ पर, और जैसे भगवान ने अनाउंसमेंट किया वो बेहोश होकर गिर गई। अभी आश्चर्य हुआ कि ना आपको, भगवान इतना खुशी की अनाउंसमेंट दे रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, तो राधा रानी को बेहोश होने का क्या काम है। तो राधा रानी को फिर जगाया गया, गोपियों ने उनको प्रेम से जगाया। तो कृष्ण भगवान ने पूछा आप बेहोश क्यों हो गई, क्योंकि आपने तो अनाउंसमेंट किया ना कि आप जा रहे हो तो आपके बिना मैं रह सकती नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा मैंने कब कहा कि मैं अकेले जाऊँगा, मेरा प्लान तो आपके साथ ही जाने का है, क्योंकि मैं आपको छोड़कर कहीं जाता ही नहीं हूँ, आपका हमारा तो नित्य का संग है। तो फिर ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं खुद नहीं जाना चाहती, आपने कहा मैं ले जाऊँगा लेकिन मैं जाना नहीं चाहती। बोले क्यों? बोले जहाँ पर वृंदावन गोवर्धन और यमुना नहीं है वहाँ पर मैं जाना नहीं चाहती, मैं रह नहीं सकती, मेरा जीवन ही उनके बिना अधूरा है। तो उन्होंने कहा कि आपका मंतव्य जानते हुए, आपको अच्छी तरह जानता हूँ मैं, ये जानते हुए पहले से ही मैंने गौलोक वृंदावन का 84 कोस का हिस्सा पृथ्वी पर भेज दिया है और गौलोक धाम का हिस्सा भेजा है, लेकिन पूरा गोवर्धन और पूरी यमुना को भी भेज दिया है। वो मैं जब ऐलान कर रहा हूँ तो वो वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। इस तरह से भगवान ने अपने क्या कहते हैं अनाउंसमेंट करने के पहले ये सब योजना बनाकर यमुना जी को और गोवर्धन जी को पृथ्वी पर भेज दिया था और वृंदावन धाम को पृथ्वी पर स्थापित कर दिया था। आज के तारीख में भी एक्चुअली वास्तव देखा जाए तो वृंदावन धाम पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी के ऊपर है, पृथ्वी पर नहीं है, वो एक विमान की तरह पृथ्वी पर ऐसे खड़ा है। लौकिक दृष्टि से हमारी बोट और हमारा ट्रेन और हमारी बस वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन वास्तविक दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से वो पृथ्वी के ऊपर है। थोड़ा सा जैसे युधिष्ठिर महाराज का रथ था ना, वो 4 उंगलियाँ ऊपर था पृथ्वी से हमेशा, उनके सत्यवचनी होने की वजह से। तो फिर जब इनका जाने का निश्चित हो गया, पहुँच गए, तो कैसे गए वो? यमुना जी वहाँ पर एक नदी के रूप में तो थी लेकिन एक देवी के रूप में भी है। हर वस्तु एक देवी या देवता के रूप में है। गोवर्धन भी भक्त हैं भगवान के, व्यक्ति हैं हमारे आप जैसे, पर्वत के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। यमुना जी जल के प्रवाहित रूप में सेवा कर रहे, लेकिन वो भी व्यक्ति देवी हैं, भगवान की सेवा कर रही हैं। हर वस्तु जो हमें लगता है कि जड़ है लेकिन वो चेतन है, लिविंग एंटिटी है वो। तो ये द्रोण नाम के पर्वत प्रकट हुए पृथ्वी पर हिमालय में, और वो द्रोण नाम के पर्वत भी व्यक्ति थे, उनके पुत्र के रूप में गोवर्धन प्रकट हो गए। और यमुना जी अपने 1,00,000 पहियों वाले स्वर्ण रथ से निकली वहां से अपने लाखों सखियों के साथ, और वो रथ से गौलोक के बाहर आकर वैकुंठों को पार करते हुए, ब्रह्म ज्योति को पार करते हुए, विरजा को पार करते हुए एक ब्रह्मांड में जहाँ पर जहाँ से पृथ्वी आई थी उस पर प्रवेश किया उसने। ब्रह्मा लोक से लेकर नीचे उतरते उतरते पृथ्वी पर प्रवेश किया उसने, ऐसे उसका आगमन का वर्णन है। और जन्म कैसे हुआ, तो यहाँ पर सूर्य देवता का विवाह जो है वो उषा देवी के साथ में हुआ। अभी उनका एक दिव्य तरीका होता है आने का और एक लौकिक तरीका होता है प्रकट होने का। जैसे भगवान भी वहाँ से आए लेकिन देवकी के गर्भ के माध्यम से प्रकट हो गए, देवकी गर्भवती भी हुई उनके लिए, उनके गर्भ में भी रहे वो। तो वो एक लौकिक दृष्टि से है, और दिव्य दृष्टि से वो वसुदेव और देवकी के संबंध से पैदा नहीं हुए, तो प्रकट हुए। प्रकट तेज ऐसे आया भगवान का जो वसुदेव के हृदय में प्रकट हो गया, फिर वही तेज वहाँ से देवकी के हृदय में ट्रांसफर हो गया, और वहाँ हृदय से वो गर्भ में स्थापित हो गया, और वहीं पर वो प्रकट हो गया भगवान बालक रूप में, गर्भ के रूप में। वैसे ही सूर्य देवता का विवाह उषा देवी के साथ हुआ। तो सूर्यदेव का इतना तेज था ना, इतना तेज था, तो जैसे समझो आप एक सिंपल स्त्री हो और आपके पति बड़े हाईली एजुकेटेड, हाईली पावरफुल, हाईली इन्फ्लुएंशियल, कोई बड़े मंत्री ऐसे कोई व्यक्ति है, तो आपको डर लगेगा ना शादी होगी तो, आप इतने बड़े व्यक्ति से मेरा विवाह हो रहा है कैसे मैं निभाऊंगी सब ये, नॉट यूज टू ऑल दिस थिंग्स। वैसे उनका तेज इतना था, आप देख सकते हैं ना तेज कितना सूर्य का होता है, वो कहाँ पर है, बिलियंस ऑफ बिलियंस माइल्स यहाँ से दूर है वो, लेकिन वहाँ से ऐसी गर्मी देते हैं यहाँ पर कि हम लोग खड़े रह सकते नहीं है, मतलब कब वर्षा होगी ऐसा सोचते रहते हैं। वो कहाँ पर है और उसकी गर्मी कहाँ लग रही है, और यहाँ का तापमान सब कुछ उनकी वजह से, ऐसे तेज वाले पति मैं कैसे निभाऊंगी उनके साथ, तो डर डर के उनका संबंध हुआ पहली बार। तो सूर्यदेव ने कहा कि ये संबंध से जो पुत्र होगा उससे पूरी दुनिया डरेगी, क्योंकि आप भी डर डर के मेरे पास में आए थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उषा देवी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने अच्छा नहीं किया, इतना डरने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि देखिए उसका परिणाम कैसे होता है, जो भी चेतना बालक को जन्म देने के समय होती है वो बालक में फिर प्रकट हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। केवल भय ही नहीं, अगर द्वेष होगा, कोई ईर्ष्या होगी, कोई लालसा होगी, पैसे की इसकी उसकी, कोई लोभ होगा, वो सब जो गर्भधारणा करने के समय चेतना हमारी है ना, वही चेतना बालक को धारण करना पड़ता है, या उसी चेतना के अनुसार जीव आपके लिए आकर्षित होता है, आप उसी जीव को अपने गर्भ पे लेके आते हो जो आपके चेतना के अनुकूल है। इसलिए हमारे हरे कृष्ण संस्था में इसके बारे में बहुत अच्छा शिक्षा प्राप्त है कि अगर भक्त लोग विवाह करते हैं तो उनको बहुत ट्रेनिंग देते हैं, और अगर बालक होने की उनकी इच्छा होती कि बालक होना चाहिए तो उसके लिए बहुत उनको गाइडेंस मिलता है। 50 माला रोज जप करना है, एक दिन उस दिन जहाँ पर आपको बालक की इच्छा है उसके पहले 4 नियम का पालन होना चाहिए, और शुद्ध जीवन होना चाहिए, व्रत रख कर रहना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, उसमें गर्भाधान विधि भी होता है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो शास्त्र में लिखी गई है। एक सुंदर संतान जीव हमारे गर्भ में आ जाए उसके लिए, उसको आकर्षित करने के लिए बहुत सारे व्रत होते हैं। एक 12 दिन का व्रत होता है पयोव्रत, बहुत कड़क होता है व्रत, और एक सितंबर में एक महीने भर का व्रत भी आता है, वो पूरा करने से फिर अच्छी श्रेष्ठ संतान हमारे गर्भ में जन्म लेती है। आपने कभी देखा है क्या कि इतिहास में क्षत्रिय राजा के पेट में एक शूद्र बालक जन्म हुआ? नहीं, क्षत्रियों को क्षत्रिय बालक ही होते थे, ब्राह्मणों को ब्राह्मण बालक ही जन्म देते थे, वैश्यों के घर में वैश्य बालक ही जन्म लेते थे, जिनका संस्कार होता था गर्भाधान उनको उनके कुल के और उनके वर्ण के अनुसार ही संतान प्राप्त होती थी। ये गर्भाधान संस्कार का शक्ति है जो उसी प्रकार का जीव आपके लिए अनुकूल प्राप्त करा देता है। अभी तो संस्कार तो होते नहीं है, जन्मना जायते शूद्रः, सब लोग बिना संस्कार के जन्म लेते हैं, हम लोग सब लोग बिना संस्कार के जन्म लिया हुआ है, केवल माता पिता के संबंध से हमारा जन्म हुआ है। तो एनीवेज हम उस चेतना की बात कर रहे थे जो उषा देवी की मन में थी, भय की। तो उन्होंने कहा इस पुत्र का नाम यमराज होगा और इससे पूरी दुनिया डरेगी। तो उनको बड़ा दुख हुआ। देखो क्या हर चीज़ का साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, हमको उतनी सोच होनी चाहिए स्वीकार करने के लिए। तो फिर उषा देवी सोचा कि अभी अगली बार ऐसे गलती नहीं करेंगे, पूरी मन की तैयारी किया, बाकी सखियों से बात किया, अच्छा तरह से मन की तैयारी करके दोबारा जब पति के पास गई तो बड़ी खुशी से आनंद से गई। तो सूर्यदेव ने कहा अपनी पत्नी से कि इस बार जो संतान होगी वो कन्या होगी, नदी रूप होगी वो, और इसके नदी के स्पर्श में कोई भी आएगा तो बड़े भाई के भय से मुक्त हो जाएगा। जो भय यमराज से है वो यमुना नदी जो कन्या के रूप में जन्म होगी उसका नाम यमुना होगा, और उसके जल में जो भी स्पर्श करेगा वो बड़े भाई के भय से मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यमराज और यमुना भाई बहन है, और उनको तीसरा भाई भी हुआ, एक मतलब तीसरा भी घर पे पैदा हुआ, उसका नाम क्या था मालूम है किसको? हाँ, शनिदेव, जो सूर्य और उषा के पुत्र हैं, और वो ही भगवान के बड़े परम भक्त हैं। बहुत लोगों को लगता है कि वो बड़े खराब हैं, डरते हैं सब लोग उससे, है ना? अभी आप मुझे बताइए, हमारे आप बताइए, पुलिस लोग खराब होते क्या? हाँ, पुलिस लोग खराब होते क्या? नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर आप अच्छे हैं, समझो आप सब लोग अच्छे हैं, तो पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं आपको, आपके पास आएंगे नहीं, वो क्या काम है उनका आपके पास आने। डरते कौन है उनसे? जो गुनहगार होते हैं, है ना? गुनहगार को डराने के लिए उनको रखा है। आम जनता को कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई वास्ता ही नहीं आता है पुलिस का, जिंदगी भर किसी पुलिस से मिलने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब फ्रेंड के रूप में मिल सकते हैं, लेकिन गुनह के रूप में, दंड देने के रूप में कोई मिलने की जरूरत ही नहीं है। उस तरह से यमराज को डरते कौन है? केवल जो पाप करते हैं वही डरते हैं उनसे, क्योंकि मालूम है कि पाप करने वाले को दंड देने वाले वो है, उनको अधिकार दिया गया पूरा। तो इस प्रकार से यमुना देवी का अवतरण हुआ, और द्रोणगिरि के पुत्र के रूप में किसका अवतरण हुआ? गोवर्धन का अवतरण हुआ। भगवान ने स्वयं वृंदावन को स्थापित किया अपनी इच्छा से, शक्ति से, और इस प्रकार से ये दोनों प्रकट हो गए। अभी वो जो प्रकट हुए थे हिमालय में प्रकट हुए थे, तो आज तो वृंदावन में है वो, कैसे वृंदावन में आए वो? मैंने आपको यमुना जी का पूरा प्रवाह बताया ना, कहाँ से कहाँ, कैसे 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 आई वो, पृथ्वी पर कैसे विराजमान हो गई। अच्छा, पृथ्वी पे यमुना जी कहाँ से आती है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री, यस, यमुनोत्री, धीरे धीरे से बोल रहे हैं लेकिन सही है वो। यमुनोत्री ऐसा स्थान हिमालय के अंदर है जहाँ से पहली बार वो दृश्यमान होती है, यानी दिखाई पड़ती है एंट्री करते हुए। इतना भयंकर प्रवाह होता है उसका, आप विचार नहीं कर सकते। स्नान करना छोड़ दीजिए उसका, इतना ठंडा होता है पानी उसका, बर्फ, केवल वो बह रहा है इसलिए जल है, अगर रुक जाएगा तो बर्फ ही बन जाएगा उसका, इतना। फिर वहाँ से निकलते निकलते फिर वो नीचे उतरते उतरते फिर वो दिल्ली तक आती है, फिर दिल्ली से आगे फिर वृंदावन में प्रवेश करती है। वैसे गोवर्धन कैसे फिर हिमालय से जन्म होने के बाद में वृंदावन में कैसे आ गए? तो भगवान अपना हर चीज़ को संपन्न करने के लिए लीला करते हैं। तो पुलत्स्य मुनि नाम के मुनि थे जो बड़े सिद्ध महात्मा थे, हाँ, एक ही साथ में अपने आप को 9 रूप में विस्तारित करने की शक्ति थी उनके अंदर, ऐसे योगी थे वो। और वो काशी के निवासी थे, और काशी में आज भी कोई पर्वत नहीं। आप कोई काशी गए यहाँ से, बनारस वाराणसी कोई गया है? पर्वत है क्या वहाँ पर? नहीं। पॉइंट टू नोट, काशी में कोई पर्वत नहीं है। और पर्वत जो है वो योग धारणा साधना जप करने के लिए बहुत अनुकूल होता है। पर्वत पर बीच में या चोटी पर कहीं भी आप बैठेंगे, पर्वत में कहीं भी बैठेंगे तो आपका भजन बहुत अनुकूल होगा, बहुत सुंदर होगा, क्योंकि भजन के लिए बहुत अनुकूल जगह है वो। और कौन सी जगह है भजन के लिए अनुकूल, थोड़ा आप भी बोलिए तो अच्छा रहेगा। हाँ, नदी का संगम, या केवल नदी ही, वो भी नदी किनारा भी बहुत सुंदर है। नदी का 2, 3, 4, 5, 7 नदियों का संगम होता है, वो बहुत पवित्र स्थान माना गया है जप के लिए। और कौन सा पवित्र स्थान है जप के लिए? जंगल, उसको वन कहते हैं, वो भी अनुकूल है। और कौन सा है जगह? आपको पता होना चाहिए ना, आगे आगे जप करने का भी चालू करेंगे तो कहाँ बैठना है पता होना चाहिए ना आपको, सबको पता होना चाहिए। हाँ यस, और कौन सी जगह है जो जप के लिए अनुकूल है? भगवान का धाम, भगवान का मैंने सुबह वर्णन किया ना, कितने सारे धामों का वर्णन किया, उसमें से कोई भी धाम भगवान का जप करने के लिए, भजन करने के लिए अनुकूल है। आप लिख रहे हैं कितने हो गए धाम? पांच हो गए। और बताइए, गौशाला जहाँ गाय निवास करती है, गाय के आसपास, क्योंकि गाय के शरीर में सारे देवता निवास करते हैं, लक्ष्मी निवास करती हैं, स्वयं विष्णु निवास करते हैं, और तुलसी वृंदावन के सामने, और समाप्त नहीं हुआ है अभी, और भी है। हाँ नहीं, उसका एक समर्पक उत्तर ऐसा है कि भक्तों के संग में, उसमें आचार्य संत सभी जो भक्त हैं वैष्णव जन हैं उनके बीच में बैठकर जप करते हैं, तो ऐसा कहा गया है, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, ना हम तिष्ठति वैकुंठे। वो कहते हैं वैकुंठ में हूँ लेकिन वैकुंठ में नहीं हूँ मैं, और योगियों के हृदय में भी नहीं हूँ। फिर भी आप नारद जी पूछते कहाँ पर हो आप, तो वही है मैं हूँ जहाँ पर एक से अधिक भक्त जो है बैठकर मेरा गुणगान करते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरा भजन करते हैं। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहीं पर रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा का भजन करते हैं, मुझे पुकारते हैं। और बताइए, एक तो बताइए कम से कम, और एक भगवान का मंदिर भूल गए आप, भगवान का मंदिर जहाँ पर भगवान विराजमान रहते हैं मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में रहते हैं, है ना, उनके सामने बैठकर जप करना बहुत पावरफुल है। और कोई जगह है उसके अलावा? बगीचा, उपवन, एक हो गया वन ना घना जंगल, और एक है मैदान जो आपने सुंदर बगीचा बनाया है, तो वन उपवन भी उसमें आता है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर हम जप करते हैं, और जप के लिए प्रतिकूल स्थान कौन से हैं यहाँ पर जप हो ही सकता नहीं? हाँ बैठोगे तो भी नहीं होगा आपका जप। हाँ हाँ नहीं, वो तो समय की बात हो गई ना। मैंने प्रश्न क्या पूछा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर जप नहीं हो सकता है, जप के लिए प्रतिकूल है, अनफेवरेबल है, वो बताइए। मांसाहार, नशा के स्थान, जुआ, व्यभिचार, चोरी, डकैती, पाप जहाँ होते हैं वहाँ पर जप नहीं हो सकता है। सात प्रकार के जघन्य पाप बताए गए हैं, वो जब जहाँ जहाँ पाप होते हैं वहाँ पर जप नहीं हो सकता है। और कहाँ जप नहीं हो सकता है? हाँ कुसंगति, जहाँ पर ये गलत कार्य होते हैं वहाँ कुसंगति होती है, और जहाँ पर शहर, शहर में कहा गया है कि जप नहीं हो सकता है क्योंकि शहर रजोगुण में होता है, बहुत सारा भोग की यहाँ पर भाग दौड़ चल रही थी, ये चाहिए वो चाहिए। आप जाइए शेयर मार्केट के अंदर और जाके सोचिए 64 राउंड शेयर मार्केट में करेंगे बैठ के, कर सकते हैं क्या? एक माला भी नहीं कर सकते शेयर मार्केट में, तो ऐसा अभी भावना ऐसी होती है वहाँ पर ना कि इंटेंस एटमोसफेयर ऑफ भोग कि चाहिए, और नहीं होगा तो दुख होता है, सर पटकते हैं, बाल खींचते हैं, उसके बाद में कभी मिलेगा तो नाचते हैं क्या करते हैं वहाँ पर। भोग की स्थान जो होते हैं ना, रजोगुणी स्थान, वहाँ पर जप नहीं हो सकता। एनीवेज, ये सब कथा हमारी निकली थी गोवर्धन के ऊपर, तो पुलस्त्य मुनि जा रहे हैं उधर, ढूंढ रहे हैं कि हिमालय में कोई अच्छा पर्वत हो तो उसको उठाकर मैं काशी में जाकर रख दूँ और फिर उस पर मैं भजन करूँगा। और पर्वत का और गुण भी होते हैं, पर्वत के अंदर जड़ी बूटियाँ होती है, अच्छी अच्छी जो दवाइयाँ मिलती हैं और रत्न मिलते हैं और पेड़ होते हैं, पक्ष फल फूल की व्यवस्था होती है, रहने की व्यवस्था गुफा में होती है, बहुत सारी, पर्वत एक बहुत परिपूर्ण व्यवस्था है सिंपल लाइफ के लिए, हाँ एरिस्टोक्रेटिक लाइफ के लिए नहीं, सादगी की जीवन के लिए, भगवान के भजन से पूर्ण सादगी का जीवन के लिए पर्वत एक पर्याप्त जगह है। साधु लोग कैसे रहते हैं अकेले वहाँ पर, बिना अगर कुछ उनको नहीं मिलेगा तो कैसे रहेंगे वहाँ पर वो, लेकिन साधु के लिए, साधु के जीवन के लिए वो पर्याप्त जगह है, सब कुछ अवेलेबल है उधर। हमारे गुरु जी भी रहे हैं वहाँ पर कई महीनों तक, एक वस्त्र पहनकर, एक गाजर खाकर। तो फिर वो गए वहाँ से, तो उनको ना वो गोवर्धन बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुंदर, उसमें दिव्य प्रकाशित जड़ी बूटियाँ थी, बहुत ही दिव्य वातावरण था। तो समझो आपको कुछ चाहिए, ये बालक मेरे ब्रह्मचारी असिस्टेंट के रूप में चाहिए, तो आप किससे बात करेंगे? पिताजी से बात करेंगे। तो वो पूछेंगे उन्होंने कि इनके पिताजी कौन है, तो उन्होंने कहा द्रोण पर्वत, उनके द्रोणगिरी उनके पिताजी हैं। तो द्रोणगिरी के पास गए, उन्होंने कहा आपका बालक मुझे भजन करने के लिए चाहिए। द्रोणगिरी बेहोश हो गए, इतना प्रेम था अपने पुत्र पर कि वो कैसे त्याग करेंगे उसका। लेकिन साधु की मांग को त्याग कैसे कर सकते हैं, टाल कैसे सकते हैं, अभद्र हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो तुरंत गोवर्धन पर्वत तुरंत तैयार हो गए साधु के पास जाने के लिए, एकदम तैयार। तो क्या कहते हैं वो पुलत्स्य मुनि को कि मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? वो शर्त ऐसी है कि जहां पर भी मुझे आप रखेंगे ना, जहां पर भी मुझे आप रखेंगे, कहीं भी गलती से भी जहां रखेंगे मैं वहीं रह जाऊंगा, मुझे आप में आप वापस उठा नहीं सकते। मतलब कोई बात नहीं, कोई रुकने का सवाल ही नहीं उठता है। आई विल टेक यू स्ट्रेट, यहाँ से उठा के सीधे मैं काशी तक उठा पहुँचा दूंगा आपको। और उसने एक हल्के से गेंद की तरह उसको उठा लिया। कितने शक्तिशाली हो गए वो। और तभी गोवर्धन पर्वत जो ना वो करोड़ों योजन आकाश में लंबे थे, वो गोवर्धन नहीं थे वो जो भगवान कृष्ण ने उठाया था। तभी तो जस्ट पैदा हुए थे, अब मैंने कहा था कि वो उधर जब पैदा हुए थे गोलोक वृंदावन में, तभी भी वो करोड़ों योजन आकाश में ऊंचे थे, उसी रूप से वो यहाँ पर प्रकट हुए थे। उसको उन्होंने एकदम आसानी से उठाया था और उठाकर हिमालय उतर गए, पूरे जमीन पर आ गए, जमीन से आगे चलते गए और रास्ते में वृंदावन आया जहाँ आगे जाकर कृष्ण आने वाले हैं उनकी इच्छा के अनुसार, और उसके आगे फिर काशी बनारस का रास्ता है। लेकिन जैसे ही वो वृंदावन के इलाके में आए तो पुलस्त्य मुनि को लघु शंका का वेग आया। अभी आप देखिए ये ऐसे मुनि थे, ये लघु शंका दीर्घ शंका भूख निद्रा का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब पे नियंत्रण प्राप्त किए योगी थे वो, कभी उनको इसमें आवेश में वश नहीं हुए, वो कभी पीड़ित नहीं हुए उस वेग से। लेकिन अचानक वृंदावन आते ही उनको लघु शंका का इतना बड़ा वेग आया कि ना आव दिखाना ताव, तुरंत रखा उसको और गए लघु शंका करने के लिए। कभी कभी होता ना ऐसे, यू लूज योर थिंकिंग प्रोसेस कि मैं किधर हूँ क्या हूँ, सो मच तकलीफ होती है जब वेग आता है किस चीज़ का। तो जब लघु शंका का निवारण किया और शुद्ध होकर लौटे तो बोले अभी चलो उठाएंगे वापस, तो उठा नहीं पाए उसको। पहले एक उंगली से उठाया जैसे पहले उठाया था, फिर पूरा हाथ लगाया, फिर दोनों हाथ लगाए, पूरा योग बल मंत्र बोल के लगाया, लेकिन टस से मस नहीं हुए गोवर्धन। तो फिर क्रोध आया उनको, क्यों ऐसे कर रहे हो गोवर्धन? मैंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने कहा था पहले से आपको कि आप जहाँ रखेंगे मुझे वहाँ पर मैं बैठ जाऊँगा, और आपने रख दिया तो मैं बैठ गया। अभी देखिए कौन बलवान है, पुलत्स्य मुनि बलवान है कि गोवर्धन बलवान है, बताइए आप, आपका विचार क्या है इस कथा के माध्यम से? जब गोवर्धन की उठने की इच्छा थी तब पुलत्स्य मुनि से उठ गए हो, अब गोवर्धन की इच्छा नहीं है उठने की तो पुलत्स्य मुनि भी इतने सारे शक्तिशाली योगी बलशाली योगी थे वो नहीं उठा पाए। और एक प्रमाण है इसका कि गोवर्धन कैसे ज़्यादा बलवान है, गोवर्धन भगवान के भक्त हैं और पुलत्स्य मुनि योगी हैं। योगी भक्त में अंतर क्या होता है कोई बता सकता है मुझे? योगी में सिद्ध योगी हैं, मतलब ऐसे हमारे जैसे वो हेल्थ के लिए योगा करने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हम लोग तो खाली अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहे, शुगर वगैरह कंट्रोल में रहे, इसलिए योगा मैट खरीदते हैं, फिर टीचर करते हैं, क्लास करते हैं। वो योग केवल हेल्थ के लिए किया गया है, वो योग तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि बंधन से मुक्त होने के लिए योग करते हैं, वो परमात्मा को साक्षात्कार करने के लिए करते हैं, त्याग विरक्त होकर करते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण करके करते हैं, सारे वेगों को वश में करके वो योग करते हैं। फिर भी योग और भक्ति में अंतर है, बताइए वो क्या अंतर है? भक्त जो है वो निष्काम भावना से भगवान की प्रार्थना करता है, और योगी जो होता है ना वो मुक्ति की कामना से अपना कार्य करता है। हम लोग सब लोग जो है ना वो भोग की अपेक्षा करते हैं, हमको कुछ काम करके कुछ फल चाहिए, कुछ काम करेंगे तो पगार चाहिए, हमको कुछ रिवॉर्ड चाहिए उसके लिए। तो हम लोग कहते हैं हमारा वर्णन किया गया है भुक्ति वाले, मतलब भुक्ति चाहने वाले, भोग चाहने वाले। दूसरे लोग होते हैं वो मुक्ति चाहने वाले होते हैं, वो योगी लोग हैं। और विरक्ति चाहने वाले होते हैं वो ज्ञानी लोग होते हैं। वो ज्ञान प्राप्त करके विरक्त हो जाते कि दुनिया में कोई अर्थ नहीं है, सब झूठ है, एवरीथिंग इज जीरो। लेकिन भक्त जो होता है ना वो इनके परे होता है, वो ना भोग की इच्छा करता है, ना त्याग की इच्छा करता है, ना विरक्ति की इच्छा करता है, ना मुक्ति की इच्छा करता है। और एक प्रकार के लोग होते हैं वो बहुत सारा भयंकर कार्य करते हैं, किसके लिए करते हैं, कुछ मिस्टिक पावर प्राप्त करने के लिए, चमत्कारिक प्राप्त करने के लिए, ऐसा हाथ लगाएंगे तो बीमार ठीक हो जाएगा, बैठे बैठे से हवा में तैरने लगेंगे। कुछ लोग ऐसे योगी होते हैं जो हिमालय में अपने आश्रम में नदी में उतरते हैं और जहाँ पर कुंभ मेला लग रहा है वहाँ प्रकट हो जाते हैं। कौन है वो लोग जानते हैं आप लोग? नागा बाबा जो होते हैं ना उधर नंगे घूमते, त्रिशूल लेके यहाँ से लेके त्रिशूल यहाँ निकालते हैं, जवान से निकालते हैं, क्या क्या करते हैं, भयंकर चीज़ें वो, ऐसे ऐसे चीज़ें करते हैं, आप देख के हैरान हो जाएंगे। तो उनको योगी कहते हैं, उनके अंदर में कोई कामना होती है कि कोई चमत्कारिक शक्ति प्राप्त हो जाए, कि किसी को देखे ऐसे तो उसके मन का पूरा रीडिंग करे कि मन में क्या आपका चल रहा है, अभी आपके मन में क्या क्या कामना है, आगे क्या करना है आपको, कपट क्या है, अच्छा क्या है, सब देख के मालूम पड़ जाए, ऐसी भी एक सिद्धि होती है। और वो बड़ी क्या कहते हैं उसको, चमत्कारिक होती है वो, आपको अगर लगेगा ना कि आप मुझे मिल रही है तो बड़े प्रभावित हो जाएंगे, आप उसी में फंस जाएंगे आप। अब मैं समझ बैठा हूँ यहाँ पर और मुझे आपके सबके मन को पढ़ने की शक्ति प्राप्त हो रही है, तो मैं कथा करते रहूँगा लेकिन सबके मन को पढ़ते रहूँगा क्या, किसके मन में क्या चल रहा है। और वो जानने के पर इतनी खुशी होगी मुझे कि मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है, मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है। तो एक अद्भुत शक्ति होती है वो, बहुत हमें मोहित कर देती है, और वो करने से भगवान भगवान कुछ याद नहीं आते, फिर उसी में आदमी फंस जाता है। तो ये भुक्ति मुक्ति और सिद्धि जो है ना, ये केवल स्वार्थी चीज़ें हैं, और भक्त जो होता है वो इसमें से कुछ नहीं चाहता है, केवल भगवान को चाहता है, इसलिए वो इन तीनों से श्रेष्ठ है। योगी से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, कर्मी से भी श्रेष्ठ है, सिद्धि कांडी से भी श्रेष्ठ है वो, क्योंकि वो खुद के लिए कुछ नहीं करता है, बाकी सब लोग खुद के लिए काम करते रहते हैं। स्व जो है ना, स्व वो अभी तक है उसके अंदर, लेकिन भक्त जो है वो स्व के परे हो जाता है, वो परमार्थी हो जाता है, वो स्वार्थ छोड़ देता है। इसलिए गोवर्धन क्यों वहां पर रुकना चाहते थे, उनको पता था कि यही वृंदावन है, यही मेरे भगवान आएंगे और यही मेरी सेवा लगने वाली है, यहाँ पर ही मेरा स्थान है, जहाँ पर मुझे आना है, खाली आने का बहाना चाहिए था उन्हें। इसलिए वृंदावन आते ही भक्ति का इतना आवेश हो गया कि उनके भक्ति के आवेश के प्रभाव से इनको लघु शंका का वेग आया और रुकना पड़ा, मजबूर हो गया रुकने के लिए। तो गोवर्धन की भक्ति ने पुलत्स्य मुनि को परास्त कर दिया और वो एक तरह से उनका बल भी समाप्त हो गया, मतलब बल कुछ निरर्थक बन गया और सारा प्लान भी उनका फेल हो गया उनके भक्ति के प्रभाव से। उन्होंने किया कुछ नहीं, केवल मन में ऐसा आवेग आया भक्ति का, भगवान की याद आई उनको, उसकी वजह से गोवर्धन वहीं बैठ गए। और फिर पुलत्स्य मुनि ने उनको शाप दिया, अभी नाराज़ हो गए ना, अभी उनका प्लान फेल हो गया, इतना सब योजना बनाया था, इतना पिताजी से परमिशन लिया, सब कुछ किया, लेकिन अभी यहीं पर बैठ रहे हैं, वो उठ नहीं रहे, उठा नहीं पा रहा उनको मैं, सारा योग बल भी फेल हो गया। तो कहा कि तुम रोज एक तिल के आकार के जमीन पर ढस जाओगे, एवरीडे यू विल गो अंडरग्राउंड द साइज ऑफ वन सीड ऑफ सेसम सीड, तिल के आकार से जमीन में ढस जाओगे। आप लोग क्या है, तो इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन जब हजारों वर्ष बीत जाएंगे तो क्या होगा, एक सेंटीमीटर होगा ना, एक फुट तो होगा ना, 1000 वर्ष के बाद में कम से कम होगा। तो फिर वो सत्ययुग में वो बैठ गए थे और तब से वो ढसना शुरू हो गए धीरे 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 धीरे। फिर त्रेता सत्ययुग समाप्त हो गया 17,96,000 साल का, फिर 432 को 4 से गुणिए, हाँ 1728 नॉट 96, तो 17,28,000 के सत्ययुग बीत गया, फिर 12,96,000 राइट त्रेता युग बीत गया, फिर 8,64,000 का द्वापर युग समाप्त होने वाला था, आखिर के 125 साल बचे थे, तब तक ये वहीं थे, इंतजार कर रहे थे कि भगवान आएंगे। इसको कहते हैं संयम, पेशेंटली वेटिंग। और तब भगवान ने जन्म लिया और तब जाकर उनका लीला शुरू हुआ गोवर्धन के आसपास, समझ में आया आपको। उसके बीच में सुंदर लीला हुई जो जो कह के हम समाप्त करेंगे, समय भी बीत रहा है। जब राम भगवान आए रामायण में, और जब राम भगवान को सेतु बंद बनाना था, हाँ, रामेश्वर से श्रीलंका तक, तभी बहुत समय का ऐसा नहीं था कि आराम से बनाओ, कोई जल्दी नहीं, ऐसा नहीं था। सीता ने वहाँ मैंडेट दिया था कि वो एक महीने के अंदर आप नहीं बनाएंगे, नहीं पहुँचेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, मैं अभी और इंतज़ार नहीं कर सकती। तो सब कुछ टाइम में बनाना था, तो ये हनुमान जी सब जगह अवकाश में उड़ रहे थे और पर्वत को उठा उठा कर डाल रहे थे उसके अंदर। ऐसा नहीं कि अच्छे अच्छे चौकोनी लकड़ी पत्थर आकार के उसको शेप में ढूंढ ढूंढ के लगा, ऐसा नहीं, बड़े छोटे जो मिलेगा वो उनको कवर करना था समुद्र को। आखिर में 7 कोस की जगह बची थी, वो सोचा हनुमान ने कि अभी बहुत पत्थर नहीं लाएंगे, एक ही पत्थर कोई मिलेगा ना पर्वत टाइप तो उसको उठा के एक ही डाल देंगे, बस झट से काम हो जाएगा। तो वो उड़ रहे थे आकाश में, तो उनको ये गोवर्धन पर्वत दिखाई पड़ा, बोले ये अच्छा पर्वत है, मैं तुरंत उसको उठाता हूँ। पृथ्वी पर आए, इतने बलवान थे ना हनुमान जी, तो उन्होंने अपने एक हाथ से उठाने का उसको जैसे यूजुअल स्टाइल में लेकिन हिले नहीं वो, तो दोनों हाथ लगाए, पूरा बल लगाया। आप सोच सकते हैं हनुमान जी का बल कितना है। पूरा बल लगाने के बाद भी गोवर्धन टस से मस नहीं हुए, तब उनको लगा अरे एक काम करते हैं, देखते हैं इसका विस्तार कहाँ तक है, कहाँ तक पहुँचे इस तरह से। तो यहाँ उड़ने लगे तो गोवर्धन जी वहाँ से बढ़ने लगे, और जितने हनुमान जी आगे गए उतने आगे गोवर्धन पहुँच गए, तो वो मिले नहीं वहाँ को एंड उनको। तो बोले इस तरफ देखते हैं यहाँ पर एंड क्या है, तो एंड से उठाते उनको। इस तरफ उड़ते गए तो इधर भी एंड नहीं मिला उनको, गोवर्धन जी बढ़ते 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 ही गए। तब हनुमान जी को ध्यान आया कि मैं तो आवेश में आया था, लेकिन लगता है कोई दिव्य विभूति है ये, तो मुझे वो अलग तरीके से उनको उठाना पड़ेगा, बल से काम नहीं चलेगा, भक्ति से काम चलेगा। तो वो झुक गए, उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने कहा महोदय आप कौन हो, आपकी परिचय दे दो। तो उन्होंने कहा कि मैं गोवर्धन हूँ, भगवान का भक्त हूँ, यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे क्यों उठाना चाहते हैं आप, आपने ना पूछा परमिशन, हाँ ना ली आज्ञा, और सीधे उठा रहे हो आप, अगर आप मुझे बता दे तो मैं कुछ करता। तो मुझे ऐसे ऐसे उन्हें संक्षेप में स्टोरी बताई पूरी रामायण की। तो वो ना रुई की तरह हल्के हो गए, कॉटन की तरह हल्के हो गए, जो हनुमान जी के उठ नहीं पा रहे थे वो रुई की तरह हल्के हो गए। हनुमान जी तुरंत उसको उठ आकाश में उड़ गए एक क्षण के अंदर। मतलब कितने गोवर्धन शक्तिशाली, देखो आप कितने शक्तिशाली है, हनुमान के आगे भी गोवर्धन प्रचंड शक्तिशाली थे। शक्ति ये शक्ति नहीं, दिव्य शक्ति, आध्यात्मिक बल। तो जैसे ही ऊपर उड़ गए ना, तो वहां से आकाशवाणी हो गई देवताओं की तरफ से कि प्रभु रामचंद्र का सेतु बंध पूरा हो गया है, अभी कोई पत्थर की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं उसको लेके वापस नीचे आ गए और रख दिया उनको। तो गोवर्धन जी बहुत रोए, इतना रोए कि जितना आश्चर्य उनको उठा नहीं पाए तभी नहीं हुआ था, उतना ज्यादा आश्चर्य उनको उनको देखकर हुआ कि किसे रो रही है, क्या किस प्रकार का दुख है ये। वो कहते हैं मैं आपको पता नहीं है 1728,000 साल के बाद में 1296,000 साल और इसके 864,000 साल तक मैं इंतजार कर रहा हूँ वहाँ पर सेवा के लिए, सॉरी 1728,000 साल और 1296,000 साल तक मैंने इंतज़ार किया है, क्योंकि त्रेता के आखिरी 11,000 साल के आसपास राम भगवान आए थे। तो इतने लाखों साल में वेट कर रहा हूँ, तब एक मौका मिला था मुझे पहली बार, वो भी चला गया आकाशवाणी की वजह से, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो हनुमान जी बड़े दंग रह गए। हनुमान जी के राम भगवान को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे भक्त से मुलाकात की आपकी, और संक्षेप में वर्णन किया। प्रभु ने कहा कि वो मेरा भक्त है गोवर्धन, और जाके उनको संदेश दिया ये सब लीला होने के बाद में कि अगले मेरे अवतार में आपसे सेवा लेंगे, ऐसी सेवा लेंगे कि आप भी दंग रह जाएंगे। वो कहेंगे आपको 7 कोस वाले जगह पर रखना था समुद्र में सेतु बंध में, वो रख नहीं पाए ना, तो आपको 7 दिन और 7 रात सर पर धारण करेंगे मेरे, इतना सम्मान देंगे, जिनके ऊपर लीला करेंगे उनको ही उठाकर सर पे स्थान देंगे। इसलिए भगवान ने उसी वादे के अनुसार उनको 7 दिन 7 रात अपने सर पर धारण किया, गौरव किया उसका। तो इस प्रकार से वो गोवर्धन जी वृंदावन में आए, और श्रीमद् भागवत में आप पढ़ेंगे तो गोवर्धन का इतना सुंदर वर्णन है कि भगवान ने कितना सम्मान दिया है गोवर्धन को, और अपनी जितनी भी प्राइवेट लीलाएं हैं, अंतरंग लीलाएं, वो सब गोवर्धन के आसपास में उन्होंने संपन्न किए। ऐसा ये यमुना जी, ऐसे ये गोवर्धन जी, वैसा वृंदावन धाम है। यमुना जी का ऐसा महात्म्य है कि यमुना जी को आप केवल देखेंगे ना, केवल देखेंगे तो भी हमारे सारे पाप पुण्य नष्ट हो जाएंगे और भक्ति प्राप्त हो जाएगी। यमुना जी में इतनी शक्ति है। यमुना जी का आप स्मरण भी करेंगे जहाँ बैठकर, आपने एक बार देख लिया उनको और स्मरण भी करेंगे कहीं बैठकर, तो भी आपके पाप हरण हो जाएंगे। वृंदावन धाम का ऐसा महात्म्य है कि वृंदावन धाम में जाना है, ये संकल्प भी करेंगे ना आप, जा भी नहीं पाएंगे आगे अलग बात, लेकिन जाना है मुझे, जाने की इच्छा है, संकल्प भी करेंगे तो भी आपके सारे पाप पुण्य और नष्ट होकर भक्ति प्राप्त होगी और वृंदावन धाम जाने का लाभ होगा आपको। लेकिन केवल संकल्प करते रहना चाहिए, जाना भी चाहिए वहाँ पर, इसलिए वे हम जाएंगे और वृंदावन धाम और गोवर्धन और यमुना जी का दर्शन करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। कोई प्रश्न है किसी का? यस। गोलोक सर्वोच्च धाम है और कमल के आकार का है। उसके अंदर केवल एक और लोक समाविष्ट है, वो है चैतन्य लोक, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का एक लोक है। श्री कृष्ण भगवान भक्त बनकर लीला करते हैं ना, भक्तावतार, उनका लोक है उसके अंदर, बाकी वो एक ही है सब। प्रेम धाम कहते हैं उसको। वो एक ही साथ एक ही है और अलग भी है। जैसे गोकुल, आपने क्या क्या कहा, गोकुल, वृंदावन और तो गोलोक जो है ना, वो मैंने कहा था कि दो प्रकार के भाव हैं, एक ऐश्वर्य भाव एक माधुर्य भाव। तो ऐश्वर्य भाव में सारे वैकुंठ लोग हैं, ब्रह्मा ज्योति के अंदर हैं, और गोलोक के अंदर प्रेम भाव है, प्रेम भाव है, माधुर्य भाव है। तो उसके ये अलग अलग अंग है, लेकिन उसी के अंदर है, ये अलग अलग विभाजित नहीं है। जैसे द्वारका अयोध्या मथुरा कैसे विभाजित है, सेपरेट सेपरेट है, वैसे विभाजित नहीं है। वो एक ही जगह पर, जैसे आपका ये गोवर्धन इको विलेज है, इसके अंदर एक जगह 25 एकड़ में वृंदावन बना हुआ है, एक जगह पर गौशाला है, एक जगह पर फार्मिंग है, एक जगह पर मंदिर है, लेकिन वो अलग अलग विभाजित नहीं है, वो एक ही जगह पर है, उसको डिमार्केशन नहीं है, इट्स ऑल वन। उस तरह से गोलोक में भगवान के अलग अलग गोकुल वृंदावन, गोलोक वृंदावन, एक ही जगह पर है सब। और कोई प्रश्न है? गोलोक के बारे में प्रश्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सबको वहाँ पर जाना है। जब हम कोई घर लेते हैं, जो आपको कोई अलग सिटी में ट्रांसफ़र होता है और घर लेना है, तो आप किसी भी घर में घुस जाते हो क्या? पहले कितना इंक्वायरी करते हो? हाँ, एक आध प्रश्न पूछ लीजिए, और बहुत सारे प्रश्नों का मैं आपको वन टू वन उत्तर दूंगा बाद में। जैसे जैसे वृंदावन धाम में नंदगांव है, बरसाना है, गोवर्धन है, अलग अलग भी भाव अलग अलग जगह पर मिलते हैं। वैसे नंदगांव जाएंगे तो वात्सल्य हुआ मिलेगा अधिक प्रकार से, है ना? उसी प्रकार से अगर किसी भक्त को भगवान से बाल रूप से ही प्रेम है, तो उनको वैसे ही जगह पर वैसे ही पास में जन्म मिलेगा और वहीं रहेंगे वो, जहाँ भगवान के बाल रूप का दर्शन करते रहेंगे। भगवान हर भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं। अगर आपको गोवर्धनधारी भगवान से प्रेम है, तो आपको भगवान नित्य गोवर्धन उठाते हुए दर्शन कराएंगे आपको, क्योंकि तो भगवान की लीला जो गोवर्धन उठाने की लीला है, वो एक बार की लीला हमारे लिए है काली, लेकिन भगवान नित्य गोवर्धन को उठा रहे हैं, नित्य लीला है भगवान की। वो एक है नित्य लीला, एक है नैमित्तिक लीला जो यहाँ पर आके करते हैं, तो अभी एक शॉर्ट टाइम है उनका यहाँ पर, कुछ समय के रहते हैं, 125 साल रहे, एक बार उसमें गोवर्धन उठा लिया 7 दिन के लिए, दोबारा नहीं उठाया। लेकिन नित्य लीला में वो भक्त के इच्छा के अनुसार रोज भी उठा सकते हैं, नित्य लीला चलती है, ऐसा है। तो गोलोक में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम सब लोगों को वहाँ जाने का प्रण करना है। हाँ, वहाँ पर जो भी जीव है ना, जैसे मैं बैठकर यहाँ पर बोल रहा हूँ, मैं गा नहीं रहा हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ, उसको क्या कहते हैं हम, गद्य कहते हैं, गद्य, प्रोज है ना। यहाँ का जो संभाषण है वो प्रोज में होता है, वहाँ का संभाषण काव्य में होता है। नॉर्मल भी आपको बात करनी है, क्या खाओगे आप, तो भी आप काव्य में बोलेंगे, उसका उत्तर भी आप देंगे तो काव्य में देंगे। इस प्रकार का संभाषण गौलोक में होता है। हम लोग यहाँ पर अभी बोलेंगे हाँ कथा समाप्त हो गया, हमको उधर जाना है, तो आप लोग क्या करेंगे, चल के जाएंगे ना यहाँ से बाहर, तो वहाँ पर कोई चलता नहीं है, सब लोग का कदम जो है ना वो डांस ही है, एवरी स्टेप इज ए डांस, हर कदम वहाँ का नृत्य है। पद लालित्य के साथ गलत नहीं, एकदम सुंदर पद लालित्य है, द स्टेप्स आर वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव एंड वेरी रिदमिक एंड वेरी सिस्टमैटिक, ऐसा है। हर एक वृक्ष जो है वहाँ का वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है, आप उसके सामने खड़े रहोगे ना, ऐसे वृक्ष के सामने खड़े रहेंगे और बोलेंगे मुझे गुलाब जाम खाना है, और आ करेंगे तो मुंह में गुलाब जाम गिरेगा पेड़ की तरफ से। सब कुछ इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष होता है, उसको कल्प वृक्ष कहते हैं, कल्प तरु कल्प द्रुम कहते हैं उसको। कल्पना कर सकते हैं आप क्या चाहिए आपको, और आपके कल्पना के परे की चीज़ भी आपके पास आ जाएगी, केवल भोजन नहीं, हर प्रकार की चीज़ आ जाएगी, हर प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करेंगी। ऐसा हर एक पेड़ वैसा है, एक पेड़ नहीं पूरे गोलोक वृंदावन में, गोलोक वृंदावन का हर एक पेड़ वैसा है, और हर गाय वहाँ की सुरभि है, वो गाय भी कल्पतरु की तरह है, गाय के सामने खड़े हो जाएंगे और जो इच्छा होगी वो पूर्ण करेगी। ऐसी गाय वशिष्ठ मुनि के पास में भी थी यहाँ पर, उस गाय से सेना उत्पन्न हो गई, उस गाय से लाखों लोगों का भोजन उत्पन्न हो गया, उस गाय से क्या नहीं उत्पन्न हुआ, हर चीज़ उत्पन्न हो गई, एवरी सिंगल थिंग व्हाट इज डिजायरेबल इज अवेलेबल। ऐसा गोलोक का वर्णन ब्रह्मा जी ने किया है, बहुत सुंदर वर्णन किया है, जिसको हम लोग मंदिर में गाते हैं रोज सुबह, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, और उससे आगे बहुत सारे श्लोक हैं, वो भगवान के दिव्य निर्माण का, सृष्टि का, और आखिर श्लोक में लंबा श्लोक है, उसमें थोड़ा गौलोक का विस्तार में वर्णन किया उन्होंने। वो सब हमारे लिए है हाँ, और अन्य जीवों के लिए नहीं है, ये सब शास्त्र सुंदर वर्णन भगवान के धाम का मनुष्यों के लिए है, ये जीवन का समय उसी में बिताना चाहिए, कर्तव्य करने के बाद में उसी में रममाण रहना चाहिए, तभी हमारा जो है ना वो मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।